वचन।
नमस्कार श्रोता, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब आज का बाइबल अध्ययन सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना की दूसरी पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है मसीह की आज्ञा। श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने मित्रों और प्रियों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से दूसरा यूहन्ना की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि किस प्रकार झूठे शिक्षक और भरमाने वाले लोग हमारे मध्य में कार्य करते हैं। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे ताकि वह हमारी सहायता करे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं और एक साथ आपके वचन पर मनन चिंतन कर सकते हैं। यद्यपि कि हम सब अलग अलग स्थानों पर हैं, आपके वचन को रेडियो के माध्यम से अध्ययन करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है प्रभु इस समय कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब वे आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुनते हैं तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन को स्पर्श करने पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका वचन सत्य है, दो धारी तलवार से भी तीखा और तेज है, जो शरीर के अंग अंग और गुदे गुदे को छेद डालता है। आज आप हमारे श्रोता भाई बहनों से भी बातचीत करें, उनके हृदयों को छेदें ताकि वे सत्यता को जान सकें, आपको जान सकें, आपसे प्रेम करने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, यहां पर यूहन्ना कहता है कि हमें सत्य का आचरण करना है और आपस में प्रेम रखना है, अन्यथा कलीसिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्या आप वास्तव में सत्य में चल रहे हैं? मैं आप ही से पूछ रहा हूं, क्या आप वास्तव में सत्य में चल रहे हैं? परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ रहे हैं या आप यूं ही संगति करते हैं और परमेश्वर के वचन में नहीं चलते? आप प्रेम को सत्य से बड़ा नहीं बना सकते हैं। सच पूछे तो प्रेम का अर्थ है प्रभु यीशु की आज्ञाओं पर चलना, जो 10 आज्ञाओं से भी बढ़कर है। 10 आज्ञाएं जिसे हम पुराना नियम में पाते हैं, 10 आज्ञाएं तो प्रशासन के लिए थी, उनके मार्गदर्शन के लिए थी और सभ्यता से यह संबंधित है, परंतु विश्वासी को इससे भी ऊपर उठने की बुलाहट है। उसे अपने जीवन में आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, सहनशीलता आदि को प्रकट करना है। यदि हम में ये गुण हैं तो हम प्रभु यीशु की आज्ञा पर चलते हैं, यदि नहीं तो हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, हमें बताया गया है कि झूठे शिक्षक जो हमारे मध्य में आकर के हमें झूठी शिक्षा देते हैं, हमें भरमाते हैं। इसलिए यूहन्ना कहता है, जब तक वह अर्थात प्रभु यीशु के विषय में उचित विचार ना रखें, तब तक सब व्यर्थ है। वह एक झूठा शिक्षक है जो हमें झूठी बातों को देता है, गलत विचारों को देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई आपसे अलग विचार ना रखे। उदाहरण के लिए, परमेश्वर द्वारा चुने जाने का विषय जो एक विवादित विषय है, जॉन वेस्ली का विचार अलग था और जॉन काल्विन का विचार भी सर्वथा भिन्न था, परंतु दोनों ही प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को स्वीकार करते थे। इसका अर्थ है कि आप प्रभु यीशु के कुंवारी से जन्म लेने को स्वीकार करते हैं, अर्थात आप परमेश्वर के वचन में विहित वृतांत को मानते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि आप प्रेरितों की उन शिक्षाओं को भी स्वीकार करते हैं जो वे देते हैं, जो उन्होंने अपनी पत्रियों में लिखी है। जॉन काल्विन और जॉन वेस्ली दोनों ही में परमेश्वर के चुनाव के विषय मतभेद था, परंतु उनमें से एक भी झूठा शिक्षक नहीं था, क्योंकि दोनों ही विश्वास की मुख्य शिक्षाओं को मानते थे। मेरे मित्रों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं जिस बाइबल कॉलेज में अध्ययन कर रहा था, वहां का एक प्राध्यापक बहुत ही अच्छा, वरन मैं कहूंगा सर्वोत्तम विश्वासी था, और प्रभु यीशु के मनुष्यत्व, उसका कुंवारी से जन्म, उसके लहू से मुक्ति और प्रभु यीशु के सदेह पुनरुत्थान का ऐसा प्रतिवादी था जैसा मैंने आज तक दूसरा नहीं देखा है। परंतु प्रभु राज के विषय में हम दोनों के विचार बिल्कुल अलग अलग थे। वह नहीं मानते थे कि हम विश्वासी महाक्लेश से पूर्व उठा लिए जाएंगे, परंतु वह मुझसे घृणा नहीं करते थे और मैं उनका अत्यधिक सम्मान करता हूं। मैं कभी नहीं कह सकता कि वह झूठे शिक्षक थे। अतः मैं बस इतना ही मानता हूं कि इस क्षेत्र में उनके विचार गलत थे। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वर्ग में हम परस्पर सहमत होंगे। यह भी हो सकता है कि हम दोनों को ही इन अन्य विषयों पर अपने अपने विचार में परिवर्तन लाना पड़े। हम मुख्यतः प्रभु यीशु के विषय क्या सोचते हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे उठाए जाने पर अलग अलग लोगों के विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि महाक्लेश से पूर्व विश्वासी उठा लिए जाएंगे, जिसको मैं भी मानता हूं, और कुछ लोगों का मानना है कि वे क्लेश में हो करके जाएंगे और उसके मध्य में उठा लिए जाएंगे, और तीसरे विचारकों का मानना यह है कि विश्वासी महाक्लेश में हो करके जाएंगे और तत्पश्चात वे उठा लिए जाएंगे। ये अलग अलग विचार लोगों के हैं, परंतु मुझे और आपको सही विचार को ही ग्रहण करना है। मेरे मित्रों, यहां पर यूहन्ना बल देकर के कहता है कि आपको प्रभु यीशु की आज्ञाओं पर चलना है और आप परमेश्वर की संतान हैं। इसका प्रमाण है कि आप भाइयों से, विश्वासियों से प्रेम रखते हैं। यूहन्ना चेतावनी देता है कि संसार में अनेक भरमाने वाले मसीही शिक्षक हैं। आज विश्वासी इस संसार में एक खतरनाक मार्ग पर चल रहा है, जिसके बाईं ओर मुक्त विचारों का जंगल है। वह एक अति सुंदर जंगल है, परंतु उसमें हमें फाड़ खाने वाले जानवर तैयार बैठे हैं, खड़े हैं, ताक में हैं। मैंने सेना के एक जवान के विषय में सुना है कि वह मसीह का बहुत ही अच्छा गवाह था, परंतु वह बाइबल अध्ययन प्रशिक्षण के निमित्त आकर्षित होकर ऐसी बाइबल अध्ययन सेमिनरी में पढ़ने के लिए चला गया जहां उसके विश्वास का सत्यानाश हो गया। अब वह समाज सेवा कर रहा है और उसकी गवाही समाप्त हो गई है। ऐसे युवकों के लिए मेरा दिल रोता है। मैं दुखित होता हूं कि हमारे लोग सही शिक्षा न पाकर भटक जाते हैं। आज हमारे कलीसियाओं में भी सही शिक्षा का अभाव है। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन पर जोर दें, उसके वचन का गहन अध्ययन करें, उसकी सत्यता को जानें, स्वयं से परमेश्वर के वचन को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, ताकि परमेश्वर का वचन हम में बसने पाए और हम परमेश्वर के वचन को समझकर उसके आज्ञा का पालन करने पाए। विश्वासी के इस मार्ग के दूसरी ओर सांपों से भरा जंगल है। यह रूढ़िवाद का जंगल है जिसमें प्रेम नहीं है। उनके लिए केवल एक ही बात महत्वपूर्ण है, उचित शिक्षा। वहां ऐसा होता है कि एक भाई आज आपकी पीठ थपथपाएगा और कल आपकी आलोचना करेगा कि आप ड के नीचे बड़ी बिंदु नहीं लगाते और ब को आर पार नहीं काटते हैं। इस प्रकार वह आपकी छवि बिगाड़ना चाहेगा। वह अपनी महत्वाकांक्षाओं के दासत्व के कारण आपको पांव तले रौंदना चाहेगा। वह प्रेम करने की अपेक्षा आपसे जलने लगेगा, ईर्ष्या करने लगेगा, आपसे बैर रखेगा, मन में आपके प्रति कड़वाहट लिए रहेगा। मेरे मित्रों, मैंने अपनी सेवा में विश्वास के महानायकों को देखा है जिन्होंने सत्य का प्रचार किया है। उनमें से एक ने भी कभी भाइयों को अलग करने का प्रयास नहीं किया और न ही किसी की सेवा को अफवाह द्वारा कभी धूमिल किया। ये लोग अपनी शिक्षाओं में ही नहीं, अपने जीवन में भी महापुरुष थे। मैंने वर्षों से यही सीखा है कि सत्य के लिए खड़े होने वाले परमेश्वर के जन जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, वे निर्भर करने योग्य मनुष्य होते हैं। आप उन पर निर्भर हो सकते हैं और जीवन के प्रत्येक चाल चलन में मर्यादा से पूर्ण होते हैं। मेरे मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर आयरनसाइड एक बार कहीं सभा कर रहे थे। कुछ लोग उन सभाओं में केवल प्रचारकों की तुलना करने और प्रचारकों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काने आते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति डॉक्टर आयरन साइड के पास आया और उनसे कहा, डॉक्टर, पिछले सप्ताह एक प्रचारक यहां आया था। उसका नाम सो एंड सो था। उसने तो प्रचार में यह कहा था, परंतु आप उसके विपरीत सिखा रहे हैं, या किसकी बात सही है? उसने बाइबल का एक ऐसे विषय का उल्लेख किया जो अप्रधान था, मात्र मतभेद का विषय था। हम सब में मतभेद है, परंतु हम असहमत होकर भी मतभेद रख सकते हैं। अतः डॉक्टर आयरनसाइड ने कहा, मैं नहीं जानता था कि उन्होंने यह शिक्षा दी है। यह बड़ी रोचक बात है, मुझे इस पर विचार करना होगा, शायद मैं गलत हूं। और वह आगे बढ़ गए। उस विद्वती मनुष्य का मुंह खुला रह गया क्योंकि वह विवाद को भड़काना चाहता था, परंतु भड़का नहीं पाया। मेरे मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर आयरनसाइड को अपने ऊपर संदेह नहीं था, परंतु उन्होंने उस भाई द्वारा भाई भाई में जहर घोलने के प्रयास को विफल कर दिया। मेरी समझ में ऐसा आचरण मुक्त विचारों से ही कहीं अधिक हानिकारक होता है, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि हम आपस में वचन के द्वारा लड़ते रहें और हम एक दूसरे के बैरी हो जाएं। मैं किसी मुक्त विचारक को पहचान लेता हूं और फिर उससे संबंध नहीं रखता हूं। मुझे एक बार किसी बिशप के साथ एक सभा में संबंध रखने का दोष दिया गया। मैं तो उसे जानता भी नहीं था। उसका कार्यक्षेत्र अलग था और मेरा कार्यक्षेत्र भी अलग था, चाहे अभियान एक ही क्यों ना हो। मैंने यही देखा कि मेरे लिए सबसे खतरनाक मनुष्य उग्रपंथी रूढ़िवादी है। वे धार्मिक शब्दों का प्रयोग करके दावा करते हैं कि सत्य के मालिक वे ही हैं। हाय उस मनुष्य पर जो छोटी छोटी बातों पर उनसे असहमत हो, विशेष करके विभाजन लाने वाले विषयों पर, कि मानो वही सबसे अधिक महत्व की बातें हों। उनकी प्राथमिकताएं शिक्षा की बातें नहीं, अति घृणित चरित्र हानि और बदनाम करने वाली बातें होती हैं। मेरी भेंट कलीसिया के सेवकों और सदस्यों दोनों से ही हुई है, जो नाम से भी अधिक जहरीले हैं। मसीह और सत्य से जब वे अपना प्रेम प्रकट करते हैं, तब कड़वाहट, ईर्ष्या और घृणा का जहर टपकता है। यूहन्ना कहता है कि यदि सत्य व्यवहार रूप में ना हो तो विनाशकारी होता है। मेरे मित्रों, हमें विश्वास की दोनों पराकाष्ठाओं से सावधान रहना है और रहना होता है। यूहन्ना कहता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि कोई परमेश्वर की संतान नहीं है। पहला यूहन्ना की पत्री 3:10 में लिखा है, जो कोई धर्म के काम नहीं करता, ध्यान दीजिए, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं है, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। परमेश्वर की संतान के दो गुण हैं, प्रेम एवं धार्मिकता। हमें प्रभु यीशु में ईश्वरत्व से इनकार करने वालों से अति सावधान रहना है। यूहन्ना कहता है कि प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का इनकार करने वाला मसीही जन नहीं है, अर्थात वह विश्वासी नहीं हो सकता। मसीही जन होने का अर्थ है प्रभु यीशु का विश्वासी होना, उसका अनुयायी होना, अनुसरण करने वाला होना। यदि आप उसके प्रभु यीशु के कुंवारी से जन्म लेने पर, उसके ईश्वरत्व पर, उसके चमत्कारी जीवन पर और क्रूस पर उसके मुक्तिदायक कार्य पर विश्वास ना करें तो आप उसके अनुयायी नहीं हो सकते हैं, आप उसके अनुसरण करने वाले नहीं बन सकते हैं। आपको यह विश्वास करना होगा कि प्रभु यीशु कुंवारी मरियम से जन्म लिया, हमारे पापों के लिए मनुष्य के पापों के बदले में क्रूस पर चढ़ाया गया, बलिदान हुआ और वह मृतकों में से जी उठा और आज भी जीवित है, और यही कारण है कि हम उसके लोग हैं, उसके संतान हैं। और यूहन्ना यही कहता है कि हमें उस पर विश्वास करना है। दूसरा यूहन्ना की पत्री 1:8 में आगे लिखा है, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गंवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। मेरे प्रियो, हमें स्पष्ट समझना है कि गलत संगति से आप उद्धार से वंचित नहीं होते हैं, परंतु संकट में पड़ जाते हैं यदि हम किसी ऐसे पंथ में सम्मिलित हों जो प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का इनकार करते हैं। तो निश्चय ही हम अपना प्रतिफल खो देते हैं। हर एक विश्वासी को प्रतिफल के प्रयास में रहना है कि एक दिन उसके मुंह से सुने मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। अपने जीवन के अंत समय में पौलुस यह कहने योग्य था। दूसरा तिमोथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 7 और 8 पद में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। अपने जीवन में उसे पूर्ण विश्वास नहीं था क्योंकि उसने कहा कि वह जब प्रभु यीशु की उपस्थिति में आए तब निकम्मा न ठहरे। अतः हमारे लिए उचित होगा कि हम झूठे शिक्षकों द्वारा भरमाए ना जाएं और इस बात के निश्चयता को लाएं कि प्रभु यीशु हमें उस दिन इनाम देगा। मेरे मित्रों, आप किस स्थान पर खड़े हैं? क्या आज आप भी पौलुस के समान कहने पाएंगे कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, लड़ रहा हूं या लड़ चुका हूं? आप भविष्य में उस इनाम के हकदार हैं जिसे प्रभु यीशु हम में से प्रत्येक विश्वासी को हमारे कार्यों के मुताबिक, हमारे कर्मों के मुताबिक देगा। आज हमारे लिए आनंद का विषय होगा कि हम उस इनाम को पाएं। मेरे प्रियो, आइए हम आज इस वचन के प्रकाशन में अपने जीवन को झांक करके देखें कि आज हम कहां पर हैं, हम किस प्रकार का प्रेम रखते हैं। प्रेम प्रेम तो हम बोलते हैं, मसीह का अनुयायी भी अपने आप को कहते हैं, परंतु क्या हम अपने भाई से जो इस संसार में रहता है उससे प्रेम करते हैं, अपने लोगों से प्रेम करते हैं, या हम यूं ही सिर्फ बोलते रहते हैं और हम करते नहीं हैं? इसीलिए यहां पर यूहन्ना हमसे कहता है कि हम सिर्फ बोलने वाले नहीं परंतु परमेश्वर के वचन की सत्यता पर चलने वाले बने और उसके विश्वास पर स्थिर बने, क्योंकि परमेश्वर हर एक मनुष्य से यही चाहता है कि हर एक व्यक्ति उद्धार को पाए, अनंत जीवन को पाए। और इसीलिए वह कहता है कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, जब आप अपना जीवन परमेश्वर के निकटता में बिताते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके प्रभु यीशु और मसीह होने पर विश्वास रखते हैं, तब आप उसके अनुयायी होते हैं। और जब आप उसके अनुयायी होते हैं तब आप उसकी आज्ञाओं का पालन भी करते हैं। मेरे मित्रों, इस संसार में जब हम रहते हैं बहुत सारे रुकावटें और बाधाएं हमारे जीवन में हैं। कई बार हम अपने नजरों को दूसरों पर टिका देते हैं, हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं कि मैं उनसे अच्छा हूं, मेरा विश्वास अच्छा है, मेरा वचन का ज्ञान अच्छा है। परंतु ये वचन का ज्ञान एक दूसरे के लिए तुलना करने का कारण नहीं, परंतु एक दूसरे को मदद करने के लिए है, एक दूसरे को ज्ञान में बढ़ाने के लिए है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए है, ताकि आप आपस में इस संसार में प्रेम रख सकें। क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब आप परमेश्वर के वचन की सत्यता को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। जब आप आज्ञाओं का पालन करेंगे तब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तब आप अपने विश्वासी भाई बहनों से भी प्रेम करेंगे, यहां तक कि आप अपने बैरी से भी प्रेम करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे और अपने उन शत्रुओं को आप क्षमा करेंगे। ये सब कुछ तभी संभव होगा जब आप सत्य को जानेंगे। मेरे मित्रों, जीवन में विश्वास का होना अति अनिवार्य है, प्रभु यीशु की उपस्थिति का होना अति अनिवार्य है। आज मैं आपके बारे में नहीं जानता कि आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, परंतु मैं आपसे यही कहता हूं कि आज आपके पास में मौका है कि आप दोष लगाने वाले नहीं परंतु प्रेम करने वाले बनिए, आज्ञा का पालन करने वाला बनिए, उसके अनुसार चलने वाला बनिए और अपने जीवन के द्वारा एक अच्छी गवाही लोगों के सामने रखिए, ताकि लोग आपके जीवन को देख करके कहने पाएं कि आप सचमुच में सच्चे और जीवित परमेश्वर के अनुयायी हैं, आप उसके पुत्र हैं, आप उसकी पुत्री हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। यह सब कुछ तभी संभव होगा जब आप प्रभु की निकटता में जीवन बिताएंगे। आज इस वचन के प्रकाशन में आप एक सही निर्णय लें, उस पर विश्वास करें, उससे प्रार्थना करें और निश्चय जानें कि वह आपकी अवश्य ही सहायता करेंगे, क्योंकि यहां पर यूहन्ना हमें इसी बात की चेतावनी देते हैं कि हमें सचेत होकर के परमेश्वर के निकटता में बने रहना है, हमें चौकस रहना है, परिश्रम करना है, ताकि हम उस प्रतिफल को पा जाएं जिसे परमेश्वर ने हम विश्वासियों के लिए रखा है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक बातों को सीखा है और आप अपने जीवन के लिए एक सही विचार, एक सही निर्णय लेंगे, ताकि आप प्रभु की संगति में बढ़ने पाएं, सत्यता को जानने पाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
ही ना मेरे मसीह लेता हूँ सुबह और शाम, गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान, तेरा ही ना मेरे मसीह लेता हूँ सुबह और शाम। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सन्मुख आने के लाया मैं कदापि योग्य न था। जब मैं गुनाहों में